हॉस्पिटल के सामने अयांश की गाड़ी खड़ी थी। आरवी के लिए वो गाड़ी का दरवाज़ा खोले खड़ा था। सामने खड़े आरवी और अभी दोनों उसे देख रहे थे। अयांश की नज़रें तो बस आरवी पर जमी हुई थीं। तभी आरवी ने अभी से कहा, अभी आज हम तुम्हारे साथ घर आएंगे। ये सुन अभी ने एक नज़र आरवी को देखकर वापस अयांश की ओर देखा और झट से बोला, हाँ आरवी, ना आरवी। आरवी उसकी ओर देखती है, ना, तुम मुझे ना कह रहे हो? अभी झट से ना में सिर हिलाता है, नहीं तो मैं तुम्हें ना नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ तुमने कहा था मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। मैंने भी हाँ बोल दिया था, पर अभी अभी मुझे याद आया आज मुझे वर्तिका के साथ मूवी देखने जाना है। तुम्हें मैं घर छोड़ने गया तो देर हो जाएगी, मूवी देखने तुम हमारे साथ आती नहीं। एक काम करो, तुम मिस्टर मेहरा के साथ घर चली जाओ, ये भी तो घर पर ही जा रहे हैं, राइट मिस्टर मेहरा? आरवी अभी को घूरने लगी। उसे घूरते पाकर अभी ने कान पकड़ लिए। सॉरी यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड, होने वाली बीवी को नाराज नहीं कर सकता, तुम अपने हस्बैंड के साथ जा सकती हो, साथ ही तो आती हो, साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं, दोस्त हो ना तुम मेरी, सब जानती समझती हो, गले में फंसी हड्डी तो नहीं निकल सकता। बाय, घर पर मिलते हैं, बोला भी वहां से अयांश की ऑफिस बिल्डिंग की ओर भाग गया। आरवी उसे आवाज देती रह गई, इडियट, देख लूंगी तुम्हें, आना घर, होने वाली बीवी की परवाह है, दोस्त की नहीं, उसे खुद की भी परवाह है, इतना डराना किसी को अच्छी बात नहीं है, चलें घर। अयांश के आरवी को गाड़ी में बैठने का इशारा किया तो वो गाड़ी में आ बैठी। उसे बिठाकर खुद भी वो ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। तुम रूठो, श्रृंगार है ये तुम्हारा, मैं मनाऊंगा, अधिकार है मेरा। जैसे ही अयांश ने ये लाइंस कही तो आरवी की नज़रें उस पर आ ठहरी। अयांश ने उसकी ओर देखकर आई विंक की और उसे वहां से लेकर निकल गया। अयांश ड्राइव कर रहा था, आरवी भी जानबूझकर मुंह फुलाए बैठी थी। तभी अयांश ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ने को हुआ। आरवी ने अपना हाथ उससे छुड़ा लिया। ये देख अयांश मुस्कुरा दिया, सच्ची झूठी रूठी हुई लाजवाब लगती हो तुम, सोच में पड़ जाता हूँ तुम्हें मनाऊं या फिर रहने दूं। आरवी ने तिरछी नजरों सिर से देखा, मत मनाइए, कौन कहता है आपको मनाइए। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए कुछ है, कहते अयांश ने गाड़ी के आगे बने बॉक्स की ओर इशारा किया, पर आरवी ने जानबूझकर ना कुछ रिएक्ट किया और ना ही चेक किया। ये देख अयांश ने नामे सिर हिलाते हुए डैशबोर्ड बॉक्स से वो चीज निकाली जो थी, उसे निकालकर आरवी की गोद में रख देता है। आरवी की चौही नजर पड़ी उस पर, होंठों पर मुस्कुराहट, आंखों में चमक आ गई, पर दूजे ही पल उसने अपनी मुस्कुराहट छुपा ली और चॉकलेट बॉक्स वापस वहीं रख दिया जहां से अयांश ने निकाला था। अयांश उसके लिए चॉकलेट से भरा डिब्बा लेकर आया था, सोचा था वो खुश होगी, खुश तो हुई पर खाई नहीं। ये देख अयांश हैरान हो गया, चॉकलेट थी उस बॉक्स में, पता है, खाई नहीं तुमने, आज मन नहीं है मीठा खाने का, आज हम चॉकलेट नहीं खाएंगे, कहते आरवी हाथ बांध कर बैठ गई। ये देख अयांश सामने देखते खुद से बड़बड़ाने लगा, आज मीठा खाने का मन नहीं, इट्स मीन मुझे भी आज मीठा नहीं मिलेगा। उसका बड़बड़ाना आरवी को सुन गया, जिसके चलते उसे हंसी आने लगी, पर उसने हंसी को कंट्रोल कर लिया, वो भी बहुत मुश्किल से। अयांश ने फिर उसकी तरफ देखा तो वो नॉर्मली गाड़ी के बाहर देख रही थी। ये देख अयांश मन ही मन खुद से बोला, जानबूझकर सता रही हो ना, सता लो, आज तुम जितना चाहो उतना मुझे सता सकती हो। तभी अयांश ने उसे सुनो कहकर आवाज़ दी, आरवी उसकी ओर नहीं देखती है। अयांश फिर वाइफी कहकर उसे आवाज़ देता है, इस बार वो अपने कोट से गुलाब का फूल निकाल उसके चेहरे के सामने कर देता है। आरवी की नज़र उस फूल पर पड़ी तो उसका चेहरा खिल उठा, हाथ भी खुद ब खुद उस फूल की तरफ बढ़ गए। आरवी ने मुस्कुराते वो फूल पकड़ा और अयांश की ओर देखा, जो अपना हाथ पीछे कर चुका था और सामने देखते ड्राइव कर रहा था। आरवी उससे नजरें हटाकर उस फूल को निहारने लगी। तभी अयांश ने गाड़ी में एक सॉन्ग प्ले कर दिया, जिसे सुनकर फिर आरवी की नज़रें उस पर आकर ठहर सी गईं, क्योंकि गाड़ी में गाना बज ही नहीं रहा था, बल्कि उसके लिए अयांश खुद भी गा रहा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। अयांश ने आरवी की ओर एक नज़र देखा जो उसे ही देख रही थी। वो मुस्कुराते उसका हाथ अपने हाथ में थाम लेता है। इस बार आरवी ने अपना हाथ अयांश से नहीं छुड़ाया, वो उसका हाथ अपने सीने पर रख लेता है, जिससे उसकी धड़कनें, जो इस वक्त बेतहाशा ही धड़क रही थी, आरवी को भी सुनाई देने लगी। इतनी ही नहीं, उसका दिल भी जोरों से धड़कने लगा। न कस्में हैं, न रस्में हैं, न शिकवे हैं, न वादे हैं, एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे सादे हैं, ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। अयांश ने आरवी के हाथ का ऊपरी सिरा आहिस्ता से चूम लेता है, जिसके चलते आरवी के होंठों पर सजी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। वो अयांश को गाते देख उसमें खो गई और उसके करीब आकर उसने कंधे पर सिर टिकाते अपनी आंखें मूंद ली। मेरी खुशियां ही न बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे, देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांसी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। जो ही वो गाना खत्म हुआ, अयांश ने म्यूजिक सिस्टम बंद कर दिया और खुद गाना भी। आरवी को ध्यान ही नहीं रहा। अयांश ने गाड़ी के ब्रेक भी लगा दिए। वो अभी भी उसके कंधे पर सिर टिकाए आंखें मूंदे हुए थी। अयांश ने सीट बेल्ट खोल, अपना थोड़ा सा उसकी ओर मुड़ा और उसका चेहरा हाथों में भर आहिस्ता से बोला, वाइफी। आरवी ने आंखें खोल उसकी तरफ देखा। दोनों की नजरें आपस में जा मिली। अयांश उसी पल अपने होंठ उसके माथे पर रख देता है। वो एक बार अपनी आंखें मूंद लेती है। अयांश के होंठों की छुअन से उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। अयांश फिर चेहरे पर नजर डालता है। सूरज की लालिमा की भांति चेहरा सुसज्जित हो चुका था, जो अयांश को पल भर में बेहिसाब सुकून पहुंचा गया। उसने आरवी को उसी पल अपने सीने से लगा लिया। आरवी ने भी उसे लिपटने में देर ना की। दोनों मेहरा सदन पहुंचे। आरवी चॉकलेट खा रही थी। अयांश ने गाड़ी रोकी, उसकी ओर देखा। तुम्हें मनाना उतना मुश्किल भी नहीं जितना लोग कहते हैं। बीवी को मनाना बहुत मुश्किल काम है। हाँ तो आपकी बीवी उनकी बीवियों जैसी भी तो नहीं है जो जल्दी से माने ना। पर एक सच ये भी है, मेरी बीवी मुझसे नाराज, मुझसे दूर नहीं रह सकती। एक सच हम भी आपको बता दें, पूरी तरह से हम अभी माने नहीं हैं। रूठी बीवी को मनाने वाला इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ है आपका। जानता हूँ, और हाँ अगले कुछ घंटों में मेरी रूठी हुई बीवी मान जाएगी। कैसे? बताता हूँ, कहकर अयांश गाड़ी से निकल उसकी ओर आया और आरवी की साइड का डोर खोल, सीट बेल्ट खोल, उसको वहीं से अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी से बाहर निकाला। क्या कर रहे हैं आप? मैं जो करूंगा वो बाद में करूंगा, अभी तुम करो। क्या करें? जिसमें तुम माहिर हो, सोने की एक्टिंग। ये सुन आरवी उसे घूरने लगी। अयांश उसे लेकर अंदर की ओर बढ़ गया। करो ना सोने की एक्टिंग, तुम भी चाहती हो मैं तुम्हें मनाऊं और मैं भी चाहता हूं तुम्हें मनाना, और ये तब होगा जब तुम मेरे पास रहोगी, ना कि मुझसे दूर। मैं चाहता हूं इसी पल से लेकर अगले कुछ घंटों तक मेरी बीवी मेरे साथ रहे, सिर्फ मेरे साथ। तुम सोने की एक्टिंग नहीं करोगी तो दादू डैड तुम्हें अपने पास रोक लेंगे, फिर तुम जल्दी से रूम में भी नहीं आओगी, जो मैं नहीं चाहता। तुम अभी मेरे साथ रूम में जाओगी। ऐसा तभी होगा जब तुम सोने की एक्टिंग करोगी। मैं कह दूंगा तुम सो रही हो, तुम्हें रूम में ले जाऊंगा, फिर तुम, मैं और चलते चलते अयांश ने चेहरे की ओर देखा।
आरवी भौहें उचकाते और वेट एंड वॉच कहते हुए अयांश ने उसकी ओर आंख मारी। वो कुछ कहती वो फिर बोल पड़ा, चलो जल्दी से सो जाओ। आरवी नामे सिर हिलाती है। सच में सोने को थोड़ी कह रहा हूँ, एक्टिंग ही करनी है। प्लीज, अपने हस्बैंड की इतनी सी बात नहीं मान सकती तुम। हम अंदर पहुंचने ही वाले हैं, चलते चलते बोलते अयांश ने आरवी की ओर देखा, जो उसी पल आंखें मूंद अपना चेहरा उसके सीने से टिका लेती है और अपना एक हाथ ऐसे लटका लेती है जैसे सच में गहरी नींद में हो, कोई होश ना हो। अयांश उसे सोई हुई को ही उठा कर ले जा रहा हो। ये देख अयांश के होठों पर भीनी सी मुस्कुराहट आ गई। मन ही मन वो उसको नंबर वन ड्रामेबाज कहता है। दोनों अंदर पहुंचे तो हॉल में बैठे दिनकर जी, अनिकेत जी और राधे तीनों ही उनकी ओर देखने लगे। अयांश उनके सामने से आरवी को लेकर जाने लगा। दिनकर जी के अंशु बोलने पर उसके कदम रुक गए। दादू, कहते वो उनकी ओर देखता है। दिनकर जी आरवी की ओर इशारा कर सो गई क्रमशः।